साकार बाबा की पालना का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त है और अव्यक्त बाप दादा ने जिन्हें फ्लाइंग एंजल का टाइटल दिया है, ऐसी हमारी फरिश्ता दीदी आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी हम सबके बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे बहुत ही बाबा के समय से और दादी की जानकी के संग में रहे हुए हैं। आपका लौकिक जन्म भारत की धरनी में लेकिन लौकिक पढ़ाई विदेश की धरनी में, ठीक इसी तरह अलौकिक जन्म भारत की धरनी में और अलौकिक पढ़ाई को आगे एडवांस में जाना वो विदेश की धरनी में। वर्तमान में आप हमारा जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस जो लंदन में बेस्ड है, उसके डायरेक्टर हैं। ऑक्सफोर्ड में जो रिट्रीट सेंटर है उसके भी आप डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ यूरोप और मिडल ईस्ट के करीब 31 कंट्रीज के भी आप डायरेक्टर हैं और इन सब से बढ़कर आप हमारी इस संस्था के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। और इससे भी बढ़कर अगर हम कहें तो आप इंटरनेशनल स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, स्पिरिचुअल लीडर, टीचर, सस्टेनर, काउंसलर, ऑथर, राइटर, बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं। हमारा जो यूएन और क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जो ब्रह्मा कुमारीज का रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें मुख्य रूप से आप ही निमित होते हैं। बाबा की मुरलियों का बहुत गहन अध्ययन, न सिर्फ अध्ययन लेकिन उसको स्वरूप में भी उतारते हैं और उसके स्वरूप बनते जा रहे हैं। तो आज जो बाबा ने हमें वरदान दिया निश्चय बुद्धि विजयी भव का, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम दीदी के अनुभव से समझेंगे। सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। थैंक यू। सारे यज्ञ के इतिहास को देखते हैं तो यही नजर आता कि निश्चय की ही विजय है। एक व्यक्ति अकेला उसको साक्षात्कार हुआ और छोटा सा संगठन हैदराबाद सिंध में इकट्ठा हुआ और फिर किस तरह से कहानी चलती गई वो तो आप लोग सभी जानते हो। तो मैं आपको डिटेल में अभी वो कहानी तो नहीं सुनाने बैठी हूँ, परंतु रियलिटी तो ये है कि कदम कदम पर जो भी बातें सामने आती ही रही। कभी किसको एक्सपेक्ट नहीं था कि हमारे ही लौकिक संबंधी हमारे से विरोध करेंगे और ब्रह्मा बाबा के जो लौकिक भाई थे उन्हों का ही सामना करना पड़ा। फिर और भी आगे बढ़ते गए तो देखा कि किस तरह से एक एक बात में बहुत बातें, अनेक कोर्ट केसेस हुए, ये सब कुछ हुआ तो भी आखिर बाबा की जीत। और उसमें भी फिर जब और सभी हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़ के गए भारत, बाबा का इशारा था आप लोग यहाँ ही रहो, और उस बीच में उनकी और तपस्या चलती रही। और उसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं था जो बाबा कहे कि आप बैठो और वो कहे नहीं हमको तो जाना है, या बाबा कहे चलो वो कहे नहीं हमको तो यहाँ बैठना है। आप सोचो आजकल के समय किस प्रकार से कई आत्माएं डिबेट करती है, आर्ग्यू करती है, अपना जिद करती है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और उस समय सारा जो संगठन था बाबा के इशारों पर चलते थे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल उन्हों को ये निश्चय था कि बाबा आया हुआ है और बाबा जहाँ हमें बिठाएंगे जहां ले चलेंगे उसमें ही कल्याण है। और फिर आबू में भी पहुंचते बेगरी पार्ट, और उसमें भी झार को छड़ना था, तो कहीं तो बहाना था सेवा का, रियल बहाना था, उनके संबंधी बुला रहे थे, तो बाबा ने भी छुट्टी दी कि हाँ आप उनकी जाके सेवा करो, परंतु फिर वहां ही बैठ गए। और फिर कहीं थे बीमारी के कारण, बाबा ने ही छुट्टी दी कि हाँ बच्चे आपको बुला रहे हैं आप जरूर जाओ, तो उसमें भी बीमारी का सहन करते भी कहीं तो उस बात में भी पास होकर के बाबा के बन करके रहे, और कोई तो फिर उसमें भी गुम हो गए। परंतु बाबा के अव्यक्त होने पर भी जो दादा लेखराज को जानते थे, उनको तो तब तक तो बॉम्बे दिल्ली आदि पहुंच गए थे, तो जब अव्यक्त बाबा बने तो उन्होंने सोचा कि बस अभी तो खेल ही खत्म, अभी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, बिखर जाएंगे। परंतु एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि जब धृतराष्ट्र ने या दुर्योधन जब देखा कि कृष्ण के बंसरी में ही इतनी आकर्षण है, जो सब गोप गोपियां सब तरफ से भाग करके उसके पास पहुंच जाती, तो उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली हाथ से खींच ली और उसको टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिया। परंतु वो जो टुकड़े टुकड़े थे, जहां वो हवा में घूमते थे, वो भी गीत वही बजने लगे। तो अव्यक्त होने के बाद तो और ही बाबा का कार्य विश्व में फैला। तो वो कहानी याद आती कि किस तरह से उन्होंने तो सोचा कि बस सभी ये तो खत्म, परंतु और ही मुरली कितनी भाषाओं में आज चल रही है सारे विश्व भर में, वही आवाज भगवान का गूंज रहा है। तो कहानी मैंने तो आपको बहुत 3 मिनट में सुनाई, परंतु जो इतना सारा यज्ञ का इतिहास है, और फिर सेवा के मैदान में भी भारत में कितनी बातें आई, कईयों ने कुछ कहानियां सुनी है, कुछ बाकी सुनने को रही हुई है, बहनें भी आप लोगों को सुनाती होंगी। तो सारा खेल क्या है, निश्चय बुद्धि का, और निश्चय से ही विजय। और जब 1974 में दादी एक छोटा सा सूटकेस, बस इतना ही दादी का सूटकेस था, और उसमें दादी के 2 वस्त्र थे, बाकी सारा जो भी लगेज था उसमें आम थे। अप्रैल मास था और दादी बाबा के सामने बैठी थी बाबा के कमरे में, और बाबा का कमरा उस समय छोटा ही था, जितना बड़ा अभी है उतना नहीं था, छोटा सा ही था, जहां बहनों की कुर्सी है वहां पर ही दीवार आती थी। तो उस छोटे से कमरे में दादियां बैठी थी, दादाएं भी बैठे थे, और फिर मेरा भाग्य था जो बाबा ने मुझे कहा था दादी को साथ लेके जाना है, तो उस समय वो छोटे से संगठन में बाबा ने दादी को कहा था कि पहले बाबा आम उठा करके दादी और मुझे दे रहे थे, तो वो तो दिया, फिर कहा कि आप टोली नहीं लेके जाना, आप ये आम ही लेके जाना सबके लिए। तो बस आम का ही सूटकेस भरा हुआ था और तो कुछ नहीं। तो दादी आकर के पहुंची तो देखा कि लंदन जैसे स्थान पर 2 छोटे से कमरे हैं, और उसमें ही बाबा का कार्य शुरू हुआ था, और अभी तक 3 साल हो गए थे, वही स्थान पर बाबा का कार्य चल रहा है। तो दादी तो कहती कम है, बोलना तो ज्ञान का ही होता है, बाकी और कुछ दादी तो कमेंट करती ही नहीं थी। तो दादी तो बड़े प्यार से उसी क्लासरूम, छोटा सा क्लासरूम, जो बेडरूम भी था, जो खाने का कमरा भी था, सब कुछ वही था, तो वहाँ पर ही दादी ने सवेरे क्लास शुरू किया। और उसमें कौन बैठे थे, एक बाहर वाला था, बाकी तो जो घर वाले थे जो भारत से ही आए हुए थे, मोइनी बहन जी, रमेश भाई जी, उषा बहन जी, डॉक्टर निर्मला और मैं, हम ही थे बस, और कोई नहीं था। और वहां से आज कहां तक पहुंची हैं, आज तो छोड़ो, जब दादी ने 2005 में विदेश छोड़ा, यहां आकर के सेटल हुई बाबा की आज्ञा अनुसार, तब तक विश्व भर के 120 देशों में सेंटर स्थापित हो चुके थे। कैसे हुआ? दादी तो कभी नहीं स्वीकार करती कि मैंने किया, और सचमुच एक माता जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती थी, जिसने सिर्फ 3 साल स्कूल पढ़ा था, तो हिसाब ही नहीं बनता है कि ऐसे माता कैसे ऐसे स्थापना कर सके। परंतु हाँ, बाबा का जादू और दादी की निश्चय बुद्धि, इन दोनों बातों ने इकट्ठा काम किया और आज विश्व भर की सेवाएं चालू है। और न केवल उस समय, परंतु दादी यहाँ पर आकर के रही, फिर बाद में तो भी सेवाएं बढ़ती गई, और फिर दादी भी अव्यक्त हो गई तो भी सेवाएं बढ़ती गई। कल ही कोई मुझे बता रहा था, वो था कैरेबियन से, तो वो युगल और उनका बेटा आए हुए थे, अरूबा, शायद आप लोगों ने कहीं उन्हें सुना भी नहीं होगा। अरूबा एक छोटा सा आइलैंड है। तो बहन मुझे सुना रही थी कि जैसे ही दादी का समाचार सुना, तो उसको ये संकल्प आया, 2 साल से ज्ञान में चल रहे थे, परंतु फिर जब दादी का भोग लगा, तो फिर उस समय उसको पता नहीं दादी की क्या टचिंग हुई, फिर नेक्स्ट डे से वो पक्के होकर के चल पड़े। तो ये तो एक छोटी सी कहानी, परंतु दादी के निश्चय में बाबा ने कैसे दादी को निमित्त बना करके कैसे सेवाएं की, वो मेरी आंखों देखी हुई बात है। तो बाबा कई बार कहते हैं ना कि बिंदु में कैसे निश्चय करें, और कई लोग तो यही सोचते हैं कि सचमुच बिंदु में कैसे निश्चय हो सकता, परंतु दादियों ने निश्चय के आधार से अपने जीवन को समर्पण किया। हम जो बैठे हैं सभी, और उसमें भी जो गृहस्थ में भी बाबा की श्रीमत पर चल रही हैं, और सेंटर्स पर रहने वाले भी जो समर्पित है, सभी कहेंगे कि बाबा के ज्ञान से हमें जो अनुभव हुआ, जो प्राप्ति हुई, उस आधार पर हम चल रहे हैं। दादियों को कुछ ज्ञान नहीं मिला, उस समय ओम की धुनी थी और बाबा था सामने, परंतु बाबा की, शिव बाबा की टचिंग और उनका पूर्व कल्प का पाठ, तो निश्चय के आधार से वो समर्पित हुए। तो शुरू से ही जो कहानी है वो है निश्चय की जीत की कहानी। तो मैं जब कहानी सुनती थी तो मुझे लगता था कि कोई भी ये कहानी सुनेगा, उनको जरूर विश्वास होगा कि ये भगवान का कार्य है। परंतु फिर और भी मैं जादू का खेल देखती गई, कैसे बाबा ने किस तरह से आत्माओं को जगह जगह निमित्त बनाया और उनके द्वारा कैसे कार्य कराया। तो बिल्कुल ये सारे, बाबा कई बार कहते हैं कि भगवान के चरित्र नहीं है, वो तो कृष्ण के चरित्रों का गायन है। भगवान तो आकर के सीधा साधा साधारण रीति से ज्ञान सुनाते, परंतु नहीं, भगवान के चरित्र तो यही है जो इतनी आत्माओं ने जीवन में परिवर्तन किया, इतनी आत्माएं बाबा के सामने समर्पित हुई। उसमें मैं गृहस्थ वालों को भी कहेंगे कि आप भी बुद्धि से तो समर्पित ही कहेंगे। और फिर इतना सब कुछ हो रहा, अभी भारत में भी जो हम देखते हैं किस तरह की सेवाएं हो रही है, कहां शुरुआत में गुरु लोग भी विरोध करते थे, और फिर साथ साथ गवर्नमेंट का भी कुछ सहयोग नहीं मिलता था, और आज कहां तक पहुंचे हैं। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने किया, हम सब कहेंगे बाबा ने किया। बड़ी दादी को कहते थे कि दादी आपके होते इतना सब कुछ हुआ, कहती वही इशारा, दादी जान के वही इशारा। तो कोई भी स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु उसमें जो खेल चलता है वो है निश्चय बुद्धि का खेल। तो आज हम अपन को देखें कि हाँ बाबा में तो निश्चय है, कोई उसमें प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु दो और बातें, या कहीं कभी कभी मैं सोचती हूँ तीन बातें, तीन और बातों में भी निश्चय कभी हिलता है थोड़ा सा, जिसको हमें फिर और मजबूत करना होता। कभी कभी परिवार को देख करके प्रश्न ये उठता कि पहले तो हम लौकिक काम भी करते थे, उसमें तो अनेकों के साथ संबंध भी होता था, परंतु वो जो प्रोफेशनल हिसाब से हमारे साथ कार्य करते और आज जो हम ब्राह्मणों के साथ कार्य व्यवहार में आते, लगता है कि शायद उनों का जीवन, उनों का स्वभाव कुछ ठीक है और यहाँ और ही कठिनाई महसूस होती है। तो उसका उत्तर तो बाबा ने दे दिया है कई बार, उनों के साथ तो कुछ हिसाब किताब नहीं है, आए आज एक स्थान पर है, कल दूसरे स्थान पर है, तनख्वाह मिल रही है और मालूम है कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो बिहेवियर है, उसको हमको ठीक रखना है, तो वो तो चल जाता। परंतु जब नज़दीक वाले होते हैं और जिन्हों में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती ब्राह्मण परिवार में, उन्हों से जो हम एक्सपेक्ट करते और वो फिर उस अनुसार नहीं कर पाते, तो उसमें ये प्रश्न आता कि ऐसे क्यों। तो बाबा ने तो कई बार अव्यक्त मुरलियों में, साकार मुरलियों में बहुत अच्छी पालना दी है और यही अंडरलाइन किया है कि आप ये मत सोचो, आपको जो पाठ बजाना है आप पाठ अपना बजाओ, और ड्रामा अनुसार उन्हों को जो पाठ मिला हुआ है वही अपना वो पाठ बजाएंगे। आपके कहने से किस कोई बदलता है? चाहे घर में आप बच्चे हो, युगल हो, कोई भी हो, आप सोचे कि ये बदल जाए फिर सब कुछ ठीक होगा, ऐसे कभी हुआ? ड्रामा कहेगा पहले आप बदल के दिखाओ, और जब हम बदल के दिखाते हैं तो अपने आप ही सब बातें सेट हो जाती, और सेंटर पर भी हम कहें कि बाकी तो सब ठीक है, बाकी इसके साथ कुछ थोड़ा मुश्किलात आती है, तो उसको क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं कि देखते भी ना देखें, सुनते भी ना सुने, जो मेरी काम की बात है वो मैं सुनूं और वो ही मैं देखूं, नहीं तो अपनी स्थिति ही नीचे ऊपर हो जाती, और जब नीचे ऊपर स्थिति होती तो फिर कुछ भी बात ठीक नहीं हो पाती। तो बाबा तो हमेशा खुद के लिए ही कहते हैं कि खुद को देख करके परिवर्तन लाओ, और ये भी मालूम है कि जो ये परिवार है कहाँ तक हमारा संबंध चला है, आधा कलप, चौथा कलप, पूरा कलप, इस परिवार के साथ हमारा पूरा कलप का संबंध रहा है। सतयुग त्रेता में किसके साथ होंगे? बाबा के बच्चों के साथ ही होंगे, कोई और बाहर वाला तो नहीं होगा। और फिर जब बाबा पुजारी बने तो हम भी बाबा के साथ साथ पूज्य से पुजारी बने, और यही परिवार साथ चला। और जब कलयुग के अंतिम घड़ियों में आकर पहुंचे हैं तो उस समय भी इन्हों के साथ ही संबंध है, और संगम युग में भी यही परिवार हमारा साथ है। और वास्तव में ऐसा परिवार जो एक परमात्मा की लगन में सभी मस्त रहते और सभी का लक्ष्य एक है और सभी एक ही स्टडी कर रहे हैं, तो हम यही सोचे कि जब स्टूडेंट हैं तो हर एक अपनी बुद्धि अनुसार, अपने भाग्य अनुसार स्टडी करता। आप कितना भी कहो कि 30 स्टूडेंट क्लास में है और 30 स्टूडेंट ही इकट्ठे ही पास हो जाए, आज तक तो नहीं दिखा है। और उसमें भी ये सोचे कि मैं जैसे कर रहा हूँ दूसरा स्टूडेंट ऐसे ही करे, तो उसमें भी कई प्रकार की गलतियां हो जाएंगी। साकार मूल्य में बाबा सदा कहते थे आप समान, फिर अव्यक्त बाबा आप समान नहीं कहते, बाप समान। क्यों? क्योंकि पहले तो साकार बाबा सामने थे, तो बेशक हम आप समान बनाने के लिए सोचते थे, तो भी फिर भी बाबा साथ थे तो सभी बाबा की तरफ ही दृष्टि रखते थे। परंतु बाबा के अव्यक्त होने पर बाबा ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान खींचवाया है, फॉलो फादर नॉट फॉलो सिस्टर ब्रदर। तो हां, सबके साथ अब जबकि मिलनसार होकर चलेंगे तो ही फिर भविष्य में इसी परिवार में भी हमारा जन्म होगा। दादी गुलजार एक बहुत मीठी कहानी सुनाती थी, कईयों ने शायद सुनी भी होंगी। तो दादी गुलजार ने बताया कि कराची के दिनों में एक बहन को बहुत कठिन लगता था परिवार के साथ चलना, और अभी तो 3, 4, 5 या मधुबन में अधिक संख्या है, परंतु कराची के दिनों की बात आप सोचो, एक ही मकान, बड़ा मकान है, मैं देख के आई हूँ कराची में, परंतु वो आजकल स्कूल है, तो एक ही कमरे में 12 लोग रहते थे, 12 बहनें, कुंज भवन, और बाहर जाने की तो बिल्कुल मना थी, क्योंकि पहुंचने के बाद तुरंत वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, फिर उसके बाद पार्टीशन वॉर शुरू हुआ, तो कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या जाके करेंगे। तो कुंज भवन में ही 12 लोगों के साथ कमरा शेयर करना, और फिर बाहर कहाँ भी जाने की मना, तो दिन रात 24 घंटों तक उनों का ही चेहरा देखो, उनों के साथ ही कार्य व्यवहार करो। आप सोच सकते हैं कि जो बहुत अंतर्मुखी थे, जिन्हों को बहुत तपस्या की लगन थी, वो तो इसमें पास हुए, बाकी तो कुछ न कुछ चूं चा चलती रहती थी। कुंज भवन, बाबा ने क्यों नाम रखा, क्योंकि चिड़िया चूं चूं करती रहती है ना, तो तभी बाबा ने कुंज भवन नाम रखा था। तो उनों के लिए तो, कईयों के लिए तो बिल्कुल वो स्वर्ग था, क्योंकि मम्मा के साथ उस मकान में रहना होता था और बाबा का भी साथ था, परंतु कुछ आत्माओं को थोड़ा मुश्किल लगा। तो एक बहन बाबा के साथ खास मिली कि बाबा तो बहुत अच्छा लगता, परंतु सबके साथ चलना इतना सहज नहीं है। तो बाबा ने उसको क्या चॉइस दी, बाबा ने कहा भले तुम शिव बाबा के साथ ही रहो, परंतु फिर आपको मुक्ति धाम में शिव बाबा के साथ लंबा समय रहना होगा। आपको यदि स्वर्ग में आना है तो शिव बाबा तो स्वर्ग में आएगा ही नहीं, फिर तो आप सबके साथ, जिनों के साथ अभी रहे हुए हैं उनों के साथ ही आना होगा। तो बाबा ने बहुत अच्छी चॉइस उसको बता दी, जीवन मुक्ति चाहिए तो ये करना होगा, मुक्ति चाहिए तो ठीक है, एक शिव बाबा ही पसंद है भले। तो कहने का मतलब कि परिवार की बातें यदि हम देखते हैं और उस पर हमारा मनन चिंतन चलता, फेल। क्यों? क्योंकि पर चिंतन पर दर्शन के लिए बाबा ने मना किया है। मैं समझती 10 दिन की साकार मुरलियां जो चली है, एक एक मुरली में, आप उस समय तो अपने स्थानों पर थे, फिर ट्रैवलिंग करके यहां पहुंचे, तो भी कल परसों भी यही था। न सुनो न कुछ ऐसे व्यर्थ बातें बोलो, झरमुई झंगमुई जिसको बाबा अपनी भाषा में कहते हैं। तो बाबा आज तक भी हमें यही इशारा दे रहे हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुक्ता में ध्यान इस पर इस पर इस पर इस पर, फिर ध्यान गया तो दिमाग भी चलेगा, फिर तो मुख से भी वर्णन करेंगे, फिर दूसरे के मन को भी खराब करेंगे। बाबा मना करते हैं। और जब खुद अपने को देखते हैं कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं और आगे के लिए मुझे कितना पुरुषार्थ करना है, तो फिर अपने आप में ही ध्यान चला जाता। मुझे 3 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ मिलने का मौका बना है, 2 अमेरिका के और 1 इंग्लैंड का भाई। तो उन्हों का संगठन हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड में एक बारी रखा था, तो हर एक अपना अनुभव सुना रहे थे और उन्होंने यही सुनाया। उनकी कहानियां तो बहुत इंटरेस्टिंग, अलग अलग कहानी थी, परंतु सार में उन्होंने यही सुनाया, यदि हमने अपना लक्ष्य पक्का नहीं रखा होता तो हम जीत नहीं पाते। दिन रात हमको दिल को ये ध्यान रहता था, हमको गोल्ड तक पहुंचना है, सिल्वर ब्रॉन्ज तक भी नहीं, गोल्ड तक हमको पहुंचना है। तो हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा किसके साथ मिलना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा एक्सरसाइज, सब उस रास्ते पर हम चलते थे, क्योंकि हमको मालूम था कि एक शाम भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगे और कुछ और बातों में लग जाएंगे तो हमारी दिनचर्या ठीक नहीं रहेंगी दूसरे दिन। तो हम लोग बिल्कुल एक दिन भी उस डिसिप्लिन को नीचे ऊपर नहीं कर सकते थे, तो हम गोल्ड तक पहुंचे। तो आप सोचो कि बाबा ने हमें किस प्रकार की जीवन बना करके दी है। सवेरे से रात्रि तक जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, यदि हम बाबा में निश्चय रखते और अपन में निश्चय रखते कि मुझे यहाँ तक जरूर पहुंचना है, तो भगवान सेवा में तो जादू करके दिखाता, भगवान बुद्धि के परिवर्तन में भी जादू करके दिखाता खुद के लिए, परंतु ऊंच पद प्राप्त करने में अपनी खुद की मेहनत है, उसमें भगवान जादू का खेल नहीं दिखाएगा। उस समय फिर आती है अपनी पढ़ाई, पढ़ाई को कहाँ तक, जो न सिर्फ मुरली पढ़ना मुरली सुनना, परंतु स्टूडेंट लाइफ हमारी सारा दिन भर, बेशक काम पर है बेशक घर पे है, परंतु स्टूडेंट लाइफ हमारी किस तरह से चलती, उस डिसिप्लिन में हम कहाँ तक अपने को रखते हैं, उस लक्ष्य को हम कहाँ तक अपने सामने रखते हैं, उसमें ये सब बातें गिनती होंगी। तो खुद में भी निश्चय, तो बाबा का निश्चय, परिवार का निश्चय, परंतु खुद में भी निश्चय कि जबकि हम बाबा के बने हैं, हमें क्षत्रिय घराने में नहीं आना है। लास्ट तक हमारी युद्ध चलती रहे, मुख से तो कईयों के साथ कईयों की युद्ध चलती है, परंतु अंदर भी कई बार युद्ध चलती, परंतु निश्चय, खुद के विजय में भी निश्चय, उस आधार पर हम और किसके साथ अपना कंपैरिजन नहीं करते। कंपैरिजन कंपटीशन की फिनिश, परंतु हमको जैसे बाबा मम्मा उनों के लिए तो फिक्स है, हमें भी चलो 8 में नहीं आएंगे ये तो चलो ठीक है, ये तो पता ही चला, परंतु 108 में विजय माला में तो सब आ सकते। एक बार अव्यक्त बाबा ने विदेशियों को कहा, छोटा सा ग्रुप बाबा के सामने बैठे थे, ग्रुप के साथ बाबा मिलते थे, तो बाबा ने सबसे पूछा कि विजयंती माला में कौन आएगा। सभी ने हाथ खड़ा किया और करीब 80 लोग थे ओम शांति भवन की स्टेज पर। तो बाबा ने कहा सभी आएंगे, तो सभी ने कहा अजी बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा, फिर तो विजय माला की अनेक और लड़ियां बाबा को बनानी पड़ेंगी। बाबा करेंगे, आप लोग हिम्मत रखते हो, निश्चय रखते हो, कोई बात नहीं, बाबा एडजस्ट कर लेंगे। सिर्फ 108 उस माला में नहीं आएंगे, बाबा अनेक और लड़ियां बनाते रहेंगे। तो आप ये मत सोचना कि हम 108 में नहीं आ सकते। लक्ष्य है विजय का, तो अपने में भी निश्चय रखना बहुत ही आवश्यक है। अपने से ही निश्चय हिल जाता, हाँ भले गलतियां भी हुई हो, परंतु ये संकल्प करें कि आज से हमारी गलती और न हो। गलतियां हुई, उसकी रियलाइजेशन हुआ, उसे बाबा से हमने माफी भी मांगी और फिर आगे बढ़ो। उसमें हम समय बिताएं गिल्टी फीलिंग के, बाबा नहीं मानते हैं। बाबा कहेंगे रियलाइजेशन है, परिवर्तन है, तो फिर उस बात को बीती सो बीती उस बात को पकड़ के क्यों रखा है। बाबा ने जब माफ कर लिया और बाबा ने भुला लिया, भगवान को कहते थे न कि मेरे अवगुण चित्त पर न धरो, तो जबकि भक्ति में भी ये गायन है, तो बाबा तो जब सामने हाजिर है, बाबा को भूल गया, फिनिश, वो ड्रामा की सीन फिनिश। परंतु आप अपने आप को माफ करके उस बात को भुला लो और आगे चलते रहो, तो अपने विजय में भी निश्चय हो, न सिर्फ निश्चय बुद्धि से विजयंती, परंतु अपने विजय में निश्चय हो। और फिर बाकी क्या रहा, बाकी रहा ड्रामा। कई हमको कहते हैं कि परिवार में भी निश्चय है, बाबा और खुद में भी निश्चय है, परंतु ये जो सीन ड्रामा की आई है ये तो बहुत कठिन है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ होगा। परंतु ड्रामा सदा नया, यदि पहले से हमने सोच लिया हो कि ड्रामा ऐसे होगा, तो ड्रामा की नवीनता हमें नजर नहीं आएंगी, हम कहेंगे ये तो मालूम ही था ना, ये तो बिल्कुल बोरिंग लगता। परंतु नित्य नया सीन, किसको एक्सपेक्ट था कि कोरोना आएगा, हालांकि बाबा ने बताया हुआ है ऐसे बीमारियां आएंगी जिसका नाम भी नहीं होगा, बहुत पीछे कुछ सप्ताह के बाद नाम रखा COVID-19, उससे पहले तो क्या हो रहा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा था लोगों को, डॉक्टर्स को ही, ऐसी बीमारियां जिसका नाम नहीं होगा, बाबा ने कहा हुआ है मुरली में, तो वो बात हो गई। फिर कहीं सोचते थे हमको तो नहीं लग सकता, हमको तो कभी नहीं होगा, परंतु जिन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया उन्होंने को भी आया। और भारत में तो जबरदस्त वो कहानी चली, विदेश में भी, सारे विश्व में कहानी चली। और बाबा मुरलियों में साकार में कहती हैं वो भी दिन आएंगे जो आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। एक एक बात बाबा ने बता भी दी थी, परंतु कुछ रजिस्टर कम होता, सोचते हैं कि ये औरों के लिए बाबा कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं कह रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, अपने लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं था। और फिर जब वो ड्रामा की सीन आई तो कईयों ने तो अच्छी तरह से उसका फायदा उठाया, कैसे, दिन भर ऑनलाइन क्लासेस अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक भारत में सबके क्लासेस ऑनलाइन थे, आप कहां पर भी जुड़ सकते थे। तो कोई बैठ करके सवेरे से रात्रि तक क्लासेस करे, ये सोचे कि हम तो बाद में आए हैं तो हमने बहुत कुछ मिस किया है, हमको तो बहुत क्लासेस सुन करके फायदा उठाना है। उन्होंने तो अच्छी तरह से तपस्या की, क्लासेस के खूब फायदा उठाया, और कहीं फिर मूंझ गए, देखो हमको कोई पालना देने वाला भी नहीं है, दादियां भी चले गई, अभी कौन पालना देगा, अभी तो घर में ही बैठना होता। तो सिचुएशन सेम थी सबके सामने, कोई उसको किस तरह से सोच करके उसका फायदा उठाते, और कहीं फिर उसका दूसरी तरफ सोच करके उसका फिर फायदा नहीं उठा सकते, परंतु और ही जो फायदा मिल रहा है उसमें उन्हों को प्राप्ति नहीं हो रही। तो हर सीन में यही होता, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, और अपने ऊपर होता कि हम किस पहलू की तरफ देखें। अभी बारिश का मौसम है तो कईयों को तो इतना अच्छा लग रहा है, इतनी गर्मी थी, गर्मी भी कम हो गई और इतना आबू में सुंदर मौसम है जो बिल्कुल सूक्ष्म वतन लग रहा है, कहीं वो सोच करके खूब नाच रही हैं, और कहीं फिर देखो टावल भी गीला रह जाता, टावल भी सूखता है। तो हर बात में नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसमें हमें अपना लक्ष्य सामने है कि हमें जीत पानी है, हमें तो बिल्कुल सूर्यवंशी घराने में आना है। तो वो अपना किस तरह से पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कल्याणकारी, तो जो सीन हमारे सामने आई है उसमें अवश्य ही कल्याण ही होगा। बाबा कल्याणकारी तो ड्रामा क्या है, बाबा की बेटी। बाबा कई बार कहते हैं कि ड्रामा बाबा की बेटी है, तो ड्रामा भी अवश्य ही कल्याणकारी है। तो कभी हम बाबा की बेटी के लिए कंप्लेंट्स न करें कि ऐसे क्यों, ऐसे नहीं, वैसे। तो ड्रामा को भी यदि हम कल्याणकारी भावना से देखते हैं तो ड्रामा फिर हमारा मित्र बन जाता। ड्रामा को आप गाली देते रहेंगे मुख से नहीं, मन में ही, तो ड्रामा आपसे किनारा करेगा कि इसको जिस रास्ते पर चलना है चलने दो, ड्रामा तो अपनी पटरी पर बिल्कुल सीधा चल रहा, एक्यूरेट। बाकी मेरे मन को पसंद नहीं आया है तो मेरा मन किसी और तरफ चल रहा। तो अपने मन को समझा करके जैसे ड्रामा चल रहा ऐसे हर सीन को दिल से प्यार से स्वीकार करें, ताकि हमारा मन भी सीधे रास्ते पर चलने लगे। और ड्रामा को स्वीकार किया तो फिर तो जैसे आज बाबा ने कहा, मालूम है ड्रामा हाजिर नाजिर है, भगवान है तो भगवान की बेटी अथवा भगवान का साथी वो भी साथ साथ ही बाबा और ड्रामा दोनों कट्ठे कट्ठे चल रहे हैं। जब दादी अव्यक्त हुई 2020 मार्च को, तो उस समय लॉकडाउन शुरू होते कुछ दिन ही हुए थे, पहले तो गवर्नमेंट ने कहा 2 दिन, फिर कहा 1 सप्ताह, फिर तो तब तक तो धीरे धीरे मालूम पड़ता गया ये तो लंबी कहानी है। तो हम ये सोचते थे जब दादी कहती थी कि मैं जब जाऊं तो मेरे जो भी कार्यक्रम हो उसमें कुछ खर्चा नहीं होना चाहिए, तो हम सोचते थे कि दादी दादी है, सारे विश्व से लोग कितना खर्चा करके टिकट्स खर्च करके आएंगे। और दादी कहती थी मेरे लिए फूल नहीं खरीदना, तो हम सोचते थे कि दादी और दादी के लिए फूल न आए कैसे हो सकता, परंतु बाबा और दादी ने अपना आपस में बात करके ड्रामा को अपना साथ रखा कि ऐसी सीन आई जो न कोई पहुंच सका, जो यहां थे ऊपर वाले पांडव भवन वाले ज्ञानसर वाले वो भी नीचे नहीं आ सके। नीचे 10,000 लोग थे, उनों के लिए भी मना थी, छोटा सा सर्कल था, पुलिस वाले सब तरफ खड़े थे, 50 लोगों की छुट्टी थी, बस वही सामने हो। तो ड्रामा आपका मित्र तब बन सकता जब आप भी ड्रामा को प्यार से स्वीकार करें। तो हर बात में ड्रामा हमारा मित्र बन सकता, कल्याणकारी ड्रामा। बहुत कहानियां है दादी की। तो दादी ट्रैवलिंग करके बारिश के मौसम में जाना था दादी को बॉम्बे, बॉम्बे की फ्लाइट रुक गई, फिर दादी ने सोचा अच्छा ठीक है हम जाएंगे दिल्ली, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी थी। फिर दादी ने एयरपोर्ट पर ही बोर्ड पर देखा कि पुणे की फ्लाइट्स चालू है, और दादी के पास समाचार आया कि एक अनन्य भाई जो शुरू में दादी प्रकाश मणि और दादी रतन मोइनी को निमंत्रण दिलाया था जापान के कॉन्फ्रेंस में, ये 1952 की बात, तो तब से बाबा का बच्चा, तो उसका दादी के पास पुणे में ही रहते थे, तो उसका समाचार मिला दादी को एयरपोर्ट पर कि उसकी अंतिम घड़ियां चल रही है। बॉम्बे की फ्लाइट बंद, दिल्ली की फ्लाइट बंद, दादी गई पुणे। पुणे में उसका कार्यक्रम वो दादी के लिए ही रुका हुआ था, फिर वो गया तुरंत ही कार्यक्रम सारा करके, दादी को फिर दिल्ली की फ्लाइट तब तक चालू हो गई, दादी दिल्ली में पहुंची। तो बारिश ने भी सहयोग दिया। तो अनेक बातें कहानियां तो बहुत होती, परंतु हम खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हमारे में निश्चय का बल कहाँ तक है। और फर्स्ट स्टेप निश्चय के लिए आत्म स्मृति, खुद में विश्वास तब आ सकता जब हम आत्म स्मृति में रहते। कितने बारी आपने साकार मूल्य में ये बात पढ़ी होंगी, आत्मा निश्चय करो। बाबा ये नहीं कहते कि आत्मा मान करके चलो, बाबा उस समय निश्चय शब्द यूज करता, आत्मा निश्चय करके चलो। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आत्मा निश्चय है, आत्म स्मृति है, तो बाबा की बहुत समीपता का और साथ का अनुभव है। और फिर आत्म स्मृति है तो परिवार में भी हम उन्हों को उस दृष्टि से देखते कि ये भी आत्मा, मेरा भाई, भाई बहन भी नहीं, मेरा भाई। अनादि कनेक्शन है इस परिवार के साथ, तो उन्हों के गुण देखने को मिलता, खुद में भी विश्वास बढ़ता। क्यों? शरीर को देखती हैं तो कोई मेरे से बहुत होशियार है, कोई मेरे से कम है, तो कभी अपने को बहुत ऊंचा समझते, कभी अपने को कम समझते। तो हर बात में किसको धन ज्यादा है, किसको पोजीशन ज्यादा है और किसको मेरे से कम, तो मेरी सिचुएशन भी उन्हों को देखेंगे कम समझेंगे, नीचे वाले को देखेंगे अपने को बहुत बढ़िया समझेंगे, परंतु नहीं, वो सब बातें संसार के बाहर, अपनी स्थिति, अपनी वैल्यूज का कनेक्शन आत्म स्मृति से। तो उसमें जो मुझे आत्मविश्वास होता, आत्मविश्वास से ही फिर बाबा की समीपता का अनुभव होता। हमारी स्थिति नीचे ऊपर होती रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बाबा की समीपता का उसमें अनुभव नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे की स्थिति है बाहर मुक्ता के कनेक्शन से, और अंदर की स्थिति है बाबा के कनेक्शन, बस बाबा को देखते और कुछ भी नहीं। तो आप जितना जितना आत्म स्मृति आत्म विश्वास को पक्का करते चलेंगे, फर्स्ट लेसन है, परंतु इस फर्स्ट लेसन से ही विजयंती, हर बात में आपकी जीत होंगी। तो बाबा का ज्ञान तो आप बहुत सुनते हो, और भी आप लोगों की आज और कल में क्लासेस तो चलेंगे ही, परंतु मधुबन में विशेष उठते बैठते चलते फिरते इस बात को अंडरलाइन करो, आत्म स्मृति और आत्म दृष्टि। निश्चय भी उस आधार से आपका बढ़ता जाएगा, आप विजय का खेल देखते चलेंगे कि कैसे हमारी विजय हो रही है। बाबा भी खुश कि हाँ बच्चों को सचमुच विजय का अनुभव हो रहा। बाबा तो चाहते ही हैं कि हमारे बच्चे जीत प्राप्त करें। बाबा कभी नहीं चाहेंगे कि हम बच्चे कुछ कम हो, तो जीत की तरफ आप उड़ते चलो निश्चय के आधार से। बाबा की याद में 2 मिनट बैठती हैं, फिर आपका और आगे का कार्यक्रम।